कितनी अच्छी बात है। देखो अलग से कोई साधन भजन की बात बताई नहीं है, कर रहे हैं उसी को ही साधन बना लो, अभी और बाकी है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम राम। पाची कर दो, गरम गरम हाथ दे दो, कागजान तो संभाल ले बस इसमें। अच्छा तब तो आवाज खराब हो जाती है, नहीं आवाज खराब होती है ना आपका भी। तो नारद जी महाराज ने कल बताया कि श्रींजय नाम का एक राजा था, उसका लड़का मरा तो उसको बहुत उपदेश दिया और कहा कि उस समय में लंबी आयु होती थी। राजा ने पूछा युधिष्ठिर जी ने कि महाराज वो लड़का जल्दी कैसे मर गया, और फिर जो है उनको नारद जी महाराज ने उपदेश देकर के फिर उस पुत्र को कैसे क्या जीवित किया जरा बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देखो ये नारद जी से संबंधित कथा है और नारद जी यहां बैठे ही हैं, मैं थोड़ी सी कथा बताऊंगा, बाकी कथा नारद जी बताएंगे। कि देखो नारद और पर्वत ये दो ऋषि हैं, इनमें एक मामा है और एक भांजा है। नारद जी तो मामा है और पर्वत भांजा है। ये अपने मामा भांजा देवलोक में खूब घूमते 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 पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आए तो यहां उन्होंने यज्ञ के द्वारा जो आहुति से भोजन मिलता था उससे आहुति से बड़े प्रसन्न होकर भोजन किया। देखो देवता लोग यूं हमारे जैसे मुंह से भोजन नहीं करते हैं, केवल घी है, या तो घी मिल जाए या घी अग्नि में डालते हैं तो उसमें जो अग्नि जलती है, घी जलता है तो वो अग्नि का रूप हो जाता है, वो पीते हैं देवता लोग। तो यज्ञ के अंदर घी डालते ही थे, घी डालने पर वो आग प्रकट होती, उस आग को वो महापुरुष ले लेते थे। ऐसे वे महापुरुष भ्रमण करते थे, बड़ा दोनों में प्रेम था। एक बार उन दोनों ने कहा कि देखो अपन साथ साथ रहते हैं, परंतु तुम्हारे मन में या मेरे मन में कोई शुभ या अशुभ संकल्प आ जाए तो एक दूसरे को प्रकट कर देना चाहिए। क्यों? कि देखो यदि शुभ संकल्प प्रकट करेंगे एक दूसरे को कि मेरे ये संकल्प आया तो उसके मन में उत्साह होगा, और यदि अशुभ संकल्प पैदा होगा तो मन में ये भाव आएगा कि अरे अशुभ संकल्प पैदा ही नहीं होने तो कहना पड़ेगा तो हमारी पोल निकल जाएगी, इसलिए अशुभ संकल्प पैदा ही नहीं होगा, दोनों को लाभ होगा। और यदि किसी ने अपना कुछ छिपा लिया, अच्छा या बुरा संकल्प छिपा लिया, तो एक दूसरे को श्राप दे देंगे, क्योंकि मनुष्य को सदा अपने संकल्प ही शुद्ध करने और नया क्या करना है, अपने अंदर जो खराबी आई हुई उसको शुद्ध करना है। ठीक है, बुरे संकल्प आएंगे तो भी कह देंगे और अच्छे संकल्प आएंगे तो भी कह देंगे। ऐसा आपस में विचार कर लिया और विचार करके ये दोनों के दोनों वहां से घूमते 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 इस राजा के पास आए, संजय श्रींजय, संजय नहीं श्रींजय है, स के अंदर री मिली हुई, श्रींजय के पास आए। राजा ने उन दोनों का बड़ा स्वागत किया। इन दोनों ने कहा कि राजन तुम बड़े धर्मात्मा हो, धर्मात्मा के घर का अन्न होता है उसको खाने से, उसके यज्ञ का प्रसाद पाने से चित्त निर्मल रहता है, इसलिए तुम्हारे यहां हम कई दिन तक रहेंगे। तो कहा ठीक है महाराज, मेरे यहां रहो। उस राजा ने अपनी एक कन्या थी, उस कन्या को कहा कि देखो बेटा, अपने यहां देवलोक से आए हुए देवर्षि नारद और ये पर्वत विराजमान है, अपना भाग्य खुल गया, इनका सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा का काम तुम्हारे पर है। वो कन्या, राजा की कन्या, इतनी स्वभाव से भी सुंदर, शरीर से भी सुंदर, और जो है कमल केसर के समान कांति वाली वो सुंदर कन्या खूब बड़े प्रेम से सेवा करती थी। और देवता के समान समझ करके उनकी सेवा की उसने। ऐसी सेवा करते करते नारद जी महाराज के मन में उस कन्या के प्रति दूषित भाव पैदा हो गया, और जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता रहता है, ऐसे उनके अंदर वो खोटा विचार बढ़ता चला गया। लेकिन उन्होंने अपने भांजे पर्वत को कहा नहीं। ये समय, ये किस समय की घटना है सज्जनों, ये बड़े विचित्र घटना है, ये अब बता देंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा था ना, ये उस समय की घटना है। नचतम भागने आए पर्वताय महात्मने, उन्होंने अपने भांजे पर्वत को ये नहीं बताया कि इस कन्या के प्रति मेरे मन में खराबी है, लेकिन पर्वत है वो समझ गए तपस्या के द्वारा और नारद जी के भाव के द्वारा समझ गए कि इनके अंदर गड़बड़ी है। तो एक दिन पर्वत ने नारद जी से कहा कि देखो, आपके और हमारे बीच में क्या बात हुई थी, शुभ हो या अशुभ हो, कोई भी संकल्प अपना एक दूसरे से छिपाया नहीं जाएगा। तुम्हारे मन के अंदर इस कन्या को देखकर बड़े खोटे विचार आ रहे हैं और तुम हमसे छिपा रहे हो, तो हम तुमको शाप देते हैं कि ये जो कुमारी है, ये जो राजकुमारी है, इसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, और विवाह से पहले तो ये आपको नारद जी समझेगी, और जिस दिन जिस घड़ी विवाह हो गया, विवाह होते ही ये आपको काले मुंह वाला बंदर जैसी आकृति वाला देखेगी। मानरं चैवते रूपं विवाहत प्रभृति प्रभो, और केवल यही नहीं देखेगी, जितने इसके सगे संबंधी पुरुष जो भी होंगे, स्त्रियां भी, वो सब आपको काले मुंह का बंदर देखे, इतना इतना शरीर, बाकी आपका शरीर है ही। नारद जी ने कहा कि बात तो भाई तुमने सही कही है, लेकिन हम भी तुमको शाप देंगे। अब क्या कि तुम्हारे भी तो स्वर्ग की इच्छा है ना, तपस्या आदि के द्वारा स्वर्ग प्राप्त हो, जबकि आप स्वर्ग में यूं ही घूमते रहते हो, फिर भी आपके अंदर स्वर्ग की इच्छा रहती है। हम शाप देते हैं कि आप खूब घूमोगे, लेकिन स्वर्ग के तक, स्वर्ग तक नहीं जा सकोगे, आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकोगे। तो शाप दे दिया, क्रोध आ गया, तब दोनों ने एक दूसरे को शाप दिया, और ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों, एक पूर्व में गया तो एक पश्चिम में चला गया, ऐसे हुए। पर्वत नाम के जो ऋषि थे वो जहां भी जाते उनकी बड़ी पूजा होती थी। इधर नारद जी का उस कन्या के साथ विवाह हुआ, वो कन्या बड़ी श्रेष्ठ थी। ज्यों ही पाणी ग्रहण हुआ और नारद जी को देखा, बंदर का मुख देखा, लेकिन उसने नारद जी के प्रति अपना प्रेम भाव में कोई कमी नहीं आने दी। नारद जी के समय के, उस समय के बहुत देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, बड़े सुंदर सुंदर पुरुष आए उनके सामने और उस सुकुमारी से कहने लगे कि अरे इस नारद के साथ तुम क्यों बैठे, तो बंदर के मुख वाला है, तुम हमारे साथ रहो, देखो हम इससे कितने सुंदर हैं। उसने सबको मना कर दिया, आपके मुख से मेरे जैसी पतिव्रता के सामने ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पतित्वे प्रतिवत्सला, मैं अपने पति में बहुत स्नेह और प्रेम रखती हूं, आपको ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। अब ये उस पतिव्रता की सुगंध सब जगह फैलने लगी तो ये पर्वत को भी पता चला कि मैंने नारद को शाप देकर अच्छा नहीं किया। नारद को तो शाप दे दिया, बिचारी उस सुकुमारी कन्या का जीवन तो मैंने खराब कर दिया ना, नारद का बंदर का मुख बना करके। पर्वत को बड़ा दुख हुआ कि आखिर मेरे मामा थे, ऐसा करना मेरे लिए अच्छा नहीं था। वो नारद जी के पास आया, नारद जी के चरणों में गिरा कि मामा जी कुछ ऐसी बुद्धि हो गई, मैंने आपको कठोर वचन कह दिए, तो आप मुझे क्षमा कीजिए और मैं अपना शाप वापिस लेता हूं। नारद जी ने कहा कि देखो पहले शाप तुमने दिया, उसके बाद शाप मैंने दिया, तो एक तरफ की गलती हो जाए तो दोबारा दूसरी तरफ से गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने भी तो आपको शाप दे दिया था लेकिन आपने पश्चाताप कर लिया, तो मैं भी अपने शाप को वापस ले लेता हूं। इस प्रकार से एक दूसरे को शाप वापस ले गए। अब नारद जी का इतना सुंदर रूप हो गया, पहले का जैसा रूप था उससे भी सुंदर हो गया, लेकिन उसको बिचारी को उस नारद जी की जो स्त्री बनी थी उसको पता नहीं चला कि क्या बात है। वो अपने यहां देखा इतना सुंदर तेजस्वी पुरुष कौन आ गया। श्री समृद्धम तदा दृष्ट्वा नारदम देवरूपिणम सुकुमारी प्रदुद्राव परपत्यभिशंकया। उसने देखा ये कोई दूसरा पति आ गया होगा मेरी सुंदरता पर मोहित होकर, तो वो वहां से यूं भगने लगी, हूं चिल्लाने लगी कौन आ गया, यह अपरिचित पुरुष कौन आ गया। नारद जी कहते हैं अरे मैं ही हूं, मैं नारद हूं। कहना ही नहीं, मेरे नारद जी तो बड़े कुरूप थे, वो मेरे पति थे, इतना सुंदर स्वरूप मेरे पति का नहीं था, मैं मेरा पति चाहती हूं। वो दौड़ के भगते हुए आगे निकली बहुत दूर, तो वहां पर्वत मिल गए। नारद जी के ही भांजे, उनकी आंखों में जल आ गया। उन्होंने कहा कि देखो देवी, मेरी बात पर विश्वास करोगी ना। वो रोती रही, कहती रही महाराज जी क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रही हूं। नहीं, ये तुम्हारे पति हैं, नारद जी यही हैं, और हम दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया था, मेरे शाप से इनका मुंह बंदर वाला हो गया, लेकिन हम तुम्हारे से इसलिए खुश हुए कि ऐसा कुरूप पति, काले मुंह का बंदर बनाया, फिर भी तुम्हारे अंदर जो एक पति जिसको मान लिया उसका अनुराग कम नहीं हुआ, इसलिए हम तुम पर बहुत खुश हुए हैं। और देखो तुम एक बहुत श्रेष्ठ स्त्रियों के अंदर मानी जाओगी, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। तब फिर पर्वत मुनि स्वर्ग में चले गए और नारद जी महाराज उस सुकुमारी के घर पर रहने लगे। ये नारद जी महाराज बैठे हैं, इनसे पूछो क्या बात है। इसके बाद की घटना ये सुनाएंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि नारद जी महाराज, मैंने आपका चरित्र नहीं पूछा था कृष्ण भगवान से, मैंने तो पूछा था कि श्रींजय का जो बेटा जिसका नाम सुवर्णष्ठीवी था, सुवर्णष्ठीवी, सुवर्णष्ठीवी माने जो थूकता था ना तो सोना निकलता था, अपने लोगों को तो कफ निकलता है, गंदगी निकलती है, वो थूक ऐसा थूक रहा सोना निकलता था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि श्रींजय का बेटा जो सुवर्णष्ठीवी था वो जल्दी कैसे मर गया, क्या बात हुई। नारद जी कहते हैं कि सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने आपको अब तक की जो कथा सुनाई है तद यथायम कार्य श्यासित यच्छेषम, जो बाकी बची है वो सुनाता हूं। अब तक जो सुनाई है एवं एतद बिल्कुल ठीक है। अब मैं और पर्वत दोनों श्रींजय राजा के यहां रहने लगे, फिर दोबारा रहने लगे। राजा ने खूब हमारा पूजन किया, कोई वस्तु की कमी नहीं थी, चातुर्मास हमने वहां किया और फिर चातुर्मास की समाप्ति के बाद जब हम वहां से जाने लगे तो पर्वत ने हमको कहा कि नारद, इस राजा ने हमारी कितनी सेवा की है, इस राजा के मन के अंदर क्या है ये कम से कम अपने को पूछना चाहिए और इसकी जो भी इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, देखो मैं तो ये बात कह नहीं सकता, आप कह दीजिए। क्यों, आप क्यों नहीं कह सकते? कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई किसी प्रकार की सेवा शुश्रूषा करे और उसके बदले में हम कुछ देवे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। देने लेने में वो चीज नहीं रहती है। आपको यदि ऐसा लगता हो तो आप कहो। पर्वत ने कहा कि देखिए नारद जी महाराज, बिना इसके मन की इच्छा पूरी किए हम चले जाएंगे तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है, तो आप करो, कहो। तो कहीं आप बीच में विरोध तो नहीं करोगे? नारद जी ने कहा, नहीं, तुम देवो और वो लेवे, वो मांगे और तुम देवो, तो मैं बीच में क्यों, मैं तो आनंदित ही होऊंगा। तब वो पर्वत ने राजा से कहा, राजन तुम्हारी जो भी इच्छा है, आवाभ्याम अनुज्ञातो वरम निर्वर चिंतये, तुम क्या चाहते हो कोई वरदान मांगो, हम दोनों आपका वरदान पूरा करना चाहते हैं। ऐसा वरदान मांगना कि जिसमें किसी की हिंसा न हो। कहीं आप देवताओं की हिंसा मांग लो या मनुष्यों की हिंसा मांग लो, ऐसा कोई वरदान नहीं मांगना। वरदान तो ऐसा ही मांगो जिससे कोई किसी की हिंसा न हो और अच्छा हो, किसी को पीड़ा न हो। श्रींजय ने कहा कि महाराज, आपने आज मुझे इतना पूछ लिया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, इससे मैं तो गदगद हो गया। कहा कि नहीं मांगिए तो मैं महाराज ऐसा चाहता हूं, मेरे एक लड़का हो, बड़ा वीर हो और आयुष्मान हो और देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हो, इंद्र से कम नहीं होना चाहिए मेरा लड़का। पर्वत ने कहा कि देखो एक बात है, तुम्हारा लड़का तो हो जाएगा पर ज्यादा लंबी आयु का नहीं होगा। क्यों महाराज? वो इसलिए नहीं होगा, होता तो लंबी आयु का हम कर देते, लेकिन तुम्हारे अंदर द्वेष है कि इंद्र के समान कांति वाला हो तो इसका मतलब है कि तुम इंद्र से भी बढ़कर अपने लड़के को चाहते हो, तो हमने पहले ही कह दिया था। तो तुम्हारे द्वेष के कारण से तुम्हारा संकल्प अधूरा रहेगा, लड़का होगा लेकिन वो देवराज इंद्र के समान नहीं होगा, वो इंद्र को पराजित करने वाला नहीं होगा। और तुम्हारा लड़का जहां भी थूकेगा ना, वो सोना है, सोना उसके मुंह से निकलेगा, सुवर्णष्ठीवी नाम होगा उसका। और इतना जरूर कह देते हैं कि तुम अपने लड़के की सदा इंद्र से रक्षा करना, क्योंकि इंद्र देखेगा कि मेरे बराबरी का कोई आ जाएगा तो वो तो मुझे हटा देगा, इसलिए आप इंद्र से सदा उसकी रक्षा करना। संजय ने कहा, महाराज मेरा बेटा जल्दी न मरे, दीर्घ जीवी रखो महाराज, बेटा हो और मर जाए तो बहुत कष्ट होता है, बेटा नहीं हो तो एक ही कष्ट होता है, वो थोड़े दिनों में हम सोच लेते हैं कि चलो भाई हमारे भाग्य में नहीं था, लेकिन बेटा हो और होने के बाद वो मरे उसमें बड़ी पीड़ा होती है महाराज। तो मुनि ने कहा, देखो भाई अब जो कह दिया सो कह दिया, अब दिए हुए वचनों को हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते, इतना है तुम्हारे पर कभी आफत आए तो हमको याद कर लेना, आधी रात को भी तैयार है। दोनों अपने चले गए, राजा संजय भी अपने यहां रहा। थोड़े दिनों के बाद उनके लड़का हुआ, सारे जगत के अंदर उसके लड़के की कांति फैली कि बड़ा सुंदर लड़का हुआ है, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही उसका गुण था। इधर इंद्र को पता चला कि मेरे समान पुत्र की इच्छा की है संजय ने, और ये पुत्र यदि ज्यादा दिन जीवित रह गया तो यह हमको मार देगा, हमसे युद्ध करेगा, हमको पराजित कर देगा। तो इंद्र ने अपने मन में बड़ा भय माना और वो बृहस्पति जी के पास गया। बृहस्पति जी ने कहा कि देखो इस विषय में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्थान है गुरु का, और गुरु वो होता है जो किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता। तुम्हारा तो मैं भला चाहता हूं, पर भला चाहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी और का अनिष्ट करूं। तो महाराज मैं क्या करूं कि तुम ही सोचो। तब उस इंद्र ने अपना जो वज्र था जिससे वृत्रासुर को मारा था, वो वज्र है उसको जीवित करके माने चेतना उसमें डाल करके और उसको उपस्थित किया। वज्र ने कहा, महाराज क्या करूं कि हे वज्र, वृत्रासुर को मारने के लिए तुम एक गदा बन गए थे, आज तुम मेरे कहने से तुम एक बाघ बन करके, सिंह बन करके जंगल में जाओ और संजय का जो बेटा है उस बेटे को मार दो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मारा है, क्योंकि संजय के ऊपर नारद जी की और पर्वत की बड़ी कृपा है। जिसके ऊपर संत कृपा होती है उसका देवता नाराज होकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो उस वज्र ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। इधर संजय जंगल में घूमने के लिए निकले परिवार सहित, और संजय तो जंगल में घूम रहे थे नदी के किनारे, ये बालक छोटा ही था, अभी 4-5 वर्ष का ही था, बड़ा बलवान, देखने में सुंदर, वो अपनी धाय माँ के साथ यूं खेल रहा था, खेलते खेलते कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, बच्चों का जैसा स्वभाव। इस समय में एक बहुत बड़ा भारी बाघ आया, सिंह आया और उस अकेले बालक को पकड़ लिया। पहले तो उसने भी उस सिंह को यूं पकड़ा यूं, पर वही वो मामूली सिंह नहीं था, वो तो वज्र था। तो उसने अपना रूप बड़ा तीखा बनाकर उसको पकड़ लिया, बच्चे को फाड़ दिया और वहीं पर वो मारा गया। वो धाय मां जोर जोर से चिल्लाई। वो तो बाघ था, वो माया से बना हुआ, वो तो अपना रूप बदल करके भग गया। और इधर राजा आए और खूब रोने लगे उस बच्चे को लेकर के, खूब रोने लगे। और उसी समय में राजा ने याद किया पर्वत को, नारद जी को याद किया। नारद जी कहते हैं हम दोनों को याद किया, हम दोनों वहां उपस्थित हुए। अब वो गिड़गिड़ाया, कहने लगा महाराज आपने बिल्कुल सही कहा था कि वस्तु जब अपने पास नहीं होती है तब अभाव का ही दुख होता है, पर आकर के चली जाती है तब अभाव का भी दुख होता है और उस वस्तु के मिलने का भी दुख होता है। अब महाराज कोई ऐसी कृपा करो महाराज। तो नारद जी ने कहा हमने पहले तो उसको खूब ज्ञान दिया और फिर उसको जिला दिया, सुवर्णष्ठीवी को जला दिया, जिला दिया, जला नहीं दिया, जिला दिया। तो जिलाने के बाद वो 1100 वर्षों तक रहा कि तुमने जिलाया क्यों, मरे हुए को क्यों जिलाया। वो इसलिए जिलाया कि श्रींजय के मन में जो इंद्र के प्रति द्वेष था वो उस व्याकुलता के अंदर खत्म कर दिया कि अब मैं इंद्र के साथ द्वेष नहीं रखूंगा, कि द्वेष नहीं रखोगे तो हम तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु दे देते हैं। तो सुनो महाराज, जो कृष्ण भगवान ने कहा, युधिष्ठिर जी व्यास जी ने कहा है, उस बात को आप याद रखो, अंदर में शोक मत रखो। शोक रखने से आपको बड़ा भारी कष्ट होगा। ये युधिष्ठिर महाराज चुपचाप बैठे रहे, फिर व्यास जी ने उनको धर्म की याद दिलाई कि देखो इस संसार के अंदर धर्म प्रमाण है, धर्म के अनुसार चलो, ये क्षत्रियों का विशेष काम है, तपस्या का काम प्राय करके ब्राह्मणों का होता है। और जब आप क्षत्रिय धर्म छोड़ करके वनवासी सन्यासी धर्म में आ जाएंगे तब तपस्या करना, अभी तुरंत युद्ध के बाद ये आपका काम नहीं होता है। प्रमाणम अप्रमाणम यह कुरियाद मोह वशंगत है। कोई आदमी प्रमाणभूत धर्म का आचरण करता नहीं और बिना प्रमाण की बातों को करता है, उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अभी आपके लिए यज्ञ करना, राज करना और यज्ञ करना प्रमुख काम है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, किसी और धर्म को श्रेष्ठ मानकर अपने धर्म का त्याग मत कीजिए, क्योंकि सभी धर्म अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ होते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज आपके वचनों का मैं पालन न करूं, ऐसा तो मैं चाहता ही नहीं हूं। आप तो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। मेरे मन में बार बार आता है कि मैंने अवध्यों का वध कर दिया। व्यास जी ने कहा कि देखो बहुत ध्यान से सुनना, यहां चार प्रकार के सिद्धांत चलते हैं। कोई तो कहता है कि सब काम भगवान कराते हैं, इस दृष्टि से भी सुनो तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने जन्म दिया और भगवान ने मार दिया, तुमको क्या चिंता पड़ी। असल में भगवान सब करते नहीं है, भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि यदि भगवान ही सब कुछ करेंगे तो उसका फल भी तो भगवान को ही मिलना चाहिए ना। इसलिए भगवान करते नहीं है, पर मोहवश लोग भगवान का नाम लेते हैं। जैसे कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर के और वृक्ष को काटने लगे तो वो पाप किसको लगता है कि वो पाप तो पुरुष को लगता है, क्योंकि वो पुरुष ही करता है। कि पुरुष को क्यों लगे जी, लोहार को लगना चाहिए जिसने कुल्हाड़ी बनाई, और उस सुथार को लगनी चाहिए जिसने उसमें लकड़ी डाली, क्योंकि यदि वो कुल्हाड़ी नहीं बनाता और उसमें लकड़ी नहीं लगाता तो वो काटता ही नहीं, तो पाप तो उनको लगना चाहिए। कि ना ना ना, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान को भी पाप नहीं लगता। भगवान के विषय में तो इतना ही है कि अपने सब कर्म भगवान के समर्पित कर देवे कि हमको कोई फल नहीं चाहिए। ऐसे जो प्राणी होते हैं उनको भगवान अपनी प्रेरणा से काम कराते, हर आदमी से नहीं कराते। अथापि पुरुषः कर्ता कर्मणो शुभ पापयोः न परो विद्यते तस्माद् एवमेतत् शुभम कृतम्। अब कोई कहे कि पुण्य करने वाला तो पुरुष ही होता है, पुण्य करने वाला केवल पुण्य और पाप करने वाला, अथापि पुरुषः कर्ता कर्मणो शुभ पापयोः न परो विद्यते तस्माद्, उसमें दूसरे का कोई कारण नहीं है, तो ये सब प्रारब्ध का फल है। तो भाई इसमें तो आप निमित्त बने हो, तो उनको उनका तो मरना लिखा हुआ था, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है, कोई आदमी हठपूर्वक काम करता है तो उसमें उसका हठ ही कारण होता है। तो तुम्हारे शत्रु जितने थे उन्होंने हठपूर्वक युद्ध किया है, तुम तो युद्ध चाहते नहीं थे, अब युद्ध के अंदर एक ही बात होगी, या तो मरेंगे या मारेंगे, मर गए तो मर गए। आपका यहां कोई दोष नहीं है, आपके नियत में क्या था, युद्ध करने की नियत थोड़ी ही थी, सबको मैं मारूं और राज्य मुझे मिले, आपकी नियत नहीं थी। तो जो इच्छा होती है उसमें फल लगा रहता है। देखो वृक्ष में फल है वो डंठल में लगा रहता है, डंठल नहीं है और वृक्ष में तोड़ा हुआ फल वहां टहनी में कहीं लटका दिया तो वो वृक्ष से लगा हुआ थोड़ा ही है। तो आपकी भावना से युद्ध नहीं हुआ है, आपकी इच्छा से युद्ध नहीं हुआ है, ये युद्ध तो आपके शत्रुओं की इच्छा से हुआ है, इसलिए आपको कोई इसमें पाप का फल नहीं होगा। तथापि लोके कर्माणि। और चौथी बात यह बताई गई है कि कर्मजं वा फलं स्मृतम्, सबको अपने कर्म का फल मिलता है, तो भाई उनका ऐसा ही कर्म था और उनका ऐसा ही फल मिल गया, आपको कोई शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज बात तो आपकी सही है, सिर के ऊपर ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस युद्ध का अंतिम फल तो राजा होना है ना, तो मैं राजा होऊंगा तो युद्ध का फल मुझे मिलेगा, तो युद्ध का शुभ फल मिलेगा, तो युद्ध का अशुभ फल भी मुझे मिलेगा। कितने अच्छे अच्छे महात्मा लोग थे, हमारे जो है पितामह थे वो चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, क्या करें, अभी पितामह गए नहीं है, भीष्म पितामह मरे नहीं है, कह रहे हैं कि जब सब मरने वाले, माने नाना देश समागता, कितने कितने पुरुष आए, सब मारे गए थे, तो मेरे पास आकर मृत्यु हो उनकी, ये मेरे लिए बड़ी जलन की और कष्ट की बात है। या आज पृथ्वी कैसी होगी उनके बिना, आज अपने पिताओं को भाइयों को न देख करके हम कैसे क्षीण हो गए हैं। ऐसे ही स्त्रियां भी अपने पतियों को और अपने पुत्रों के बिना अपने घरों के अंदर किस प्रकार से विलाप कर रही होंगी, उस विलाप से मेरे मन में बार बार शोक होता है। व्यास जी महाराज कहने लगे आपको कोई विषाद नहीं करना चाहिए, ये सब काम काल की शक्ति से हुआ है, आपके पास क्या ताकत थी कि आप इन बड़े बड़े राजाओं को मारते। काल के न कोई माता है न पिता है, काल तो सबके कर्म का साक्षी है, अतएव आप युद्ध में मारे गए लोगों के लिए समझिए कि उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया और उस कर्म के अनुसार काल ने उनको दंड दिया है। ये काल शक्ति के अंदर सारे संसार को भगवान अपने कब्जे में रखते हैं और कभी कभी अधर्म भी धर्म होता है, कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। जैसे अभी आप युद्ध, अभी आप राजलक्ष्मी को छोड़ करके वन में जाना चाहते हो, कहते तो आप धर्म हो लेकिन ये अधर्म हो जाएगा, और युद्ध में आपने इनको मारा तो मारना लगता तो अधर्म है लेकिन ये आपका धर्म था, आपने धर्म को धर्म की रक्षा के लिए मारा है। क्योंकि शास्त्र में आता है देवताओं का और दैत्यों का आपस में 32,000 बरस तक संघर्ष हुआ, सब जगह खून खून हो गया, दैत्यों को मारा और उनके दैत्यों का पक्ष लेने वाले शालावृक नाम के ब्राह्मण थे वे भी उसमें मारे गए जो 88,000 थे, लेकिन देवताओं को ब्राह्मण वध का पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि देवताओं ने धर्म का उच्छेदन नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने दैत्यों का पक्ष लिया, उनके लिए यज्ञ किया, तो उनका पक्ष लेने के कारण से वे मारे गए। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों के अनुसार देखनी चाहिए। आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, उससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और शुभ कर्म कीजिए। शुभ कर्म क्या करूं महाराज? कि देखिए, जिन राजाओं के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अभी वहां हैं, राजाओं के वहां, उन बच्चों को राजगद्दी पर बैठाओ और उनकी जो माताएं हैं उन माताओं के सबकी रक्षा कीजिए। तेषां पुराणी राष्ट्राणी गत्वा राजन सुहृद वृतः भ्रातृन पुत्रान पौत्रांश्च स्वे स्वे राज्य अभिषेच। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पोता, इन सबको अपने अपने राज्य पर बैठाओ। और जिन राजाओं के कोई लड़का नहीं है, लड़की है, तो उस लड़की को वो हक दो, लड़की को राजगद्दी पर बैठाओ ताकि उन स्त्रियों के मन से शोक दूर हो जाए। और सबको आप आश्वासन दो, ये सब काम आप करोगे तो हजारों हजारों संन्यास से बढ़कर आपका ये काम होगा, कितनी दुखी आत्माओं को आप शांत करोगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब खूब लंबा चौड़ा विवेचन होता है कि क्या प्रायश्चित है, किन किन कर्मों को कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे क्या है, तो ये बहुत लंबे चौड़े विवेचन सुने हैं। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित बताते हैं, ब्रह्म हत्या का कैसे प्रायश्चित होता है, गुरु पत्नी गामी होता है उसका कैसे प्रायश्चित होता है, मदिरा पीने वाला ब्राह्मण होता है वो यदि मदिरा पी ले तो उसका कैसे प्रायश्चित होता है, बड़े भारी चार पाप है। एक चोरी करने वाला होता है उसका क्या क्या प्रायश्चित होता है, पराई स्त्री का और पराए धन का अपहरण करे तो क्या क्या प्रायश्चित होता है, ऐसे बहुत से कर्म बताए। मनुष्य को खाने में पीने में कैसे रहना चाहिए, बोलने में क्या बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे बोलता है उसके लिए कितना प्रायश्चित होता है, किसी के मन में हमारी वाणी से दुख हो जाता है तो उसे क्षमा याचना सबसे बड़ा प्रायश्चित है, और उसके लिए मौन सबसे बड़ी साधना होती है। ऐसे कई बातें बताई हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज को व्यास जी महाराज और भी बात बताते हैं कि देखो, इस स्वयंभू मनु ने एक संगीता बनाई, एक आचार संगीता बनाई, किस मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि भाई कभी कोई क्रोध से वचन निकल जाए, यज्ञ करो और वहां भगवत स्मरण करो, नाम ले भगवान का, क्योंकि वाणी के अंदर यदि भगवान का नाम नहीं आएगा तो वाणी में पवित्रता नहीं आएगी, अच्छा प्रायश्चित नहीं होगा। खूब भगवान का नाम लेना चाहिए। खाने पीने में ध्यान रखो, किसी के यहाँ मरना हो जाए तो वहां 10 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। किसी के यहाँ प्रसूति हो जाए, प्रसव हो जाए, माने बाल बच्चे पैदा हो जाए, तो वहां भी उनको 10 दिन तक कुछ नहीं खाना चाहिए। यहाँ 10 दिन लिखा है, मरने पर तो 12 दिन की बात आती है। ब्याई हुई गाय होती है, उसका 10 दिन के भीतर भीतर उसका दूध बिल्कुल अग्राह्य होता है, अपने यहाँ तो ज्यादा दिन मानते हैं। ऐसे बहुत से ब्याज, और जो ब्याज लेना है ना, विष्ठा वारधुषी का शान्नम, ब्याज के द्वारा ही अपना जीवन चलाए, बस ब्याज आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, तो वो अन्न बहुत दूषित माना गया है, बहुत गंदा, विष्ठा के समान बताया है। इस प्रकार से कई प्रकार की बातें बताई। दान देओ तो सावधान रहो, जो ब्राह्मण तपस्वी नहीं है, स्वाध्याय वाला नहीं है, चरित्रवान नहीं है, और उस ब्राह्मण को दान देने पर वो ब्राह्मण दान को पचा नहीं सकेगा, इसलिए उस ब्राह्मण के हित के लिए वो दान मत दो। भाई ऐसा दान यदि हम आपको दे देंगे, ब्राह्मण देवता आपका पतन हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण जो वेद शास्त्र जानता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, निर्मंत्र है और निर्वृत है, और जो है वो किसी के वो निर्वृत है माने शास्त्र ज्ञान से भी रहित है, वेद ज्ञान भी नहीं जानता, शास्त्र भी नहीं जानता, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अनुसूय के किसी की भी निंदा नहीं करता, कभी किसी प्रकार की याचना नहीं करता, किसी को कठोर शब्द नहीं बोलता, ऐसा बिल्कुल शीत स्वभाव, शांत स्वभाव वाला संतोषी ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण को आप दान देंगे तो वो दान आपका अक्षय दान हो जाएगा। केवल पढ़े लिखे की बात नहीं है। और नवी देयम अनुक्रोशा दीनायाप्यपकारिणे, देखो एक तो दान ना उपकारी ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए, जिस ब्राह्मण ने हमारा उपकार किया है उसको दान नहीं देना चाहिए। क्यों? उसको पुरस्कार देना चाहिए। दान जिस समय आप दान दोगे, भाई वो हमारे घर ब्राह्मण है इन दान में दो, घर ब्राह्मण ने दान नहीं देना, उसको तो अलग से दे, उसका तो दान का हिस्सा ही अलग होता है, वो दान की भावना नहीं देने देना चाहिए उसको, उसको पुरस्कार की भावना से दिया जाना चाहिए, वो दान नहीं, मना किया है। न दद्याद यश से, यश के लिए नहीं कि हमारी एक प्लेट लगा दो यहां, हम इतना पैसा लगा देते हैं। आजकल ये बहुत चल गया कि भाई स्कूल के लिए चंदा मांगते हैं, देखो भाई चंदा क्यों मांगो, हमारा नाम लगा दो, हमारे बाप का नाम लगा दो, सारी स्कूल हम बना देंगे। एक गांव में गए, उस गांव के अंदर पूछा कि भाई ये कैसे स्कूल में ये नाम कैसे रखा, तो कहा कि साहब इस जाति वाले आदमी के पास इतना पैसा है, इसने कहा कि आप कहीं कुछ मांगो गांव मत मांगो, गांव में आपको अस्पताल खोलना है, स्कूल खोलना है, जो भी काम कराना है आप मेरे बाप के नाम से करवा दो, सब पैसा मैं लगा दूंगा। तो लोगों ने देखा भी ठीक है, अब इतना पैसा तो ला नहीं सकेंगे, गांव में जरूरत है, तो उसने अपने बाप का नाम लगा दिया, ठीक है मेरा नाम ये रहना चाहिए, सारा खर्चा लगाऊंगा। अब वहां अच्छे न उपकार ने और न नृत्य गीत शीलेशु, जो नाचने गाने वाले हैं उनको दान नहीं देना चाहिए, और जो भांड वगैरह है उनको भी दान नहीं देना चाहिए, जो मत उन्मत्त चोर निंदक है उनको भी नहीं देना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज बोले कि महाराज आपने हमको बहुत अच्छी बात सुनाई, मैंने ये अपना शोक छोड़ दिया, शोक छोड़ दिया। जैसे कोई अपना कपड़ा उतार देता है ऐसे मैंने शोक को उतार दिया। अब मुझे वर्ण धर्म और आश्रम धर्म बताओ। तो वेद व्यास जी ने कहा कि देखो यदि आप इतनी बात सुनना चाहते हो तो नारद जी की ओर देख करके कहा, नारद जी महाराज मुझे वर्ण धर्म और आश्रम धर्म सुनाओ, चातुर्वर्ण से चा खिलान। तो नारद जी ने कहा कि देखो अभी आप नगर में प्रवेश करो, राजगद्दी स्वीकार करो, इतना काम करो, उसके बाद पितामह भीष्म के पास चलते हैं, वो आपको जो है सब बताएंगे। तो सब ऋषि मुनि और अगल बगल के सब लोग महाराज युधिष्ठिर के साथ चले, बड़े सुंदर रथ में बैठे, धृतराष्ट्र को आगे करके और नगर के अंदर गए और नगर के अंदर उनका बहुत सत्कार हुआ। घड़े ले ले करके माताएं बहनें आईं शुभ शकुन के लिए और नाना प्रकार के फल है फूल है उनसे उनका शकुन के लिए स्वागत किया और सब जो है महाराज युधिष्ठिर के साथ नगर में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक होगा और फिर वे पितामह भीष्म के पास जाएंगे, ये कथा आगे चलेगी। नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण
जीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण